नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। और जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है परिक्रमा, तो आज भी आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की परिक्रमा पर। आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन। नमस्कार शगुन।
नमस्कार सरफिरोजी। हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। दिस इज शगुन चोपड़ा विद सरफिरोजी एंड फॉर यू लिसनर्स ऑन द प्रोग्राम वील बी प्रोवाइडिंग यू विद द लेटेस्ट न्यूज इंक्लूडिंग बिजनेस अपडेट्स, रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो ट्रिब्यूट्स एंड आर डिस्कशन सेगमेंट विच इज डेटलाइन इंडिया। टूडे इट्स डेडिकेटेड टू वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ आर लाइफ, सो लिसनर्स यू हैव टू कीप लिसनिंग टू अस टू नो मोर अबाउट दैट एंड देयर इज अ लॉट मोर कमिंग अप फॉर यू इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। But we'll get started with the headlines first. President Robby Mumu asserts only cleanliness will make the country healthy and developed, addresses Safai Mitra Sammelan at Ujjain in Madhya Pradesh.
World Food India Pradarshini Nayi Delhi mein shuru, Pradhanmantri Narendra Modi ne kaha, सरकार खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
Campaigning intensifies for the second phase of assembly elections in Jammu and Kashmir.
और चीन के जांगझू में भारत की मालविका बंसोड़ चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
And now it's time for our segment Dateline India and we'll be taking a look at the developments taking place at national or global level. And today, as I told about you in the beginning of the program, today we are talking about World Food India 2024. And food, absolutely there's no doubt about it, food is one of the basic necessities of life. Food contains nutrients. These nutrients are namely carbohydrates or carbs, more commonly known as that, protein, minerals, fat, etc. Food contains these nutrients and these nutrients are substances which are essential for growth, repair and maintenance of body tissues and for the regulation of vital processes such as respiration, excretion, movement, growth, metabolism. There are many vital processes that we need food for. Nutrients also provide the energy to our bodies which we need to function. And also we have a unit to measure the energy in food. It's measured in calories. And there are a lot of factors on which the number of calories that we need depends, such as age, sex, weight, height and the level of activity.
और शगुन, जिस तरह आपने बताया कि खाना उन चीजों में से है जो हमारी बेसिक जरूरत है, जैसे कि हम हवा और पानी के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह खाना भी उतना ही जरूरी है।
राइट।
और हम क्या खाते हैं, हमारी हेल्थ काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है। जैसे आपने बताया कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर को कैलोरीज के रूप में एनर्जी देता है, और अगर आपके खाने में वैरायटी है तो फिर खाना और इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अगर बात करें हमारे देश भारत की, तो हमारे भारत का कल्चर ही खाने से जुड़ा है। अगर हम देश के एक हिस्से से जी बिल्कुल दूसरे हिस्से में जाते हैं तो खाने का जो रूप रंग है वो बिल्कुल अलग हो जाता है।
लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ फूड्स आर अवेलेबल
जी, बिल्कुल
डिफरेंट स्टेट्स एंड
ग्रामीण खान पान भी अलग होता है और शहरों में जो खाना होता है वो बिल्कुल अलग होता है जी। तो और देश का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी रोजी रोटी के लिए फूड प्रोडक्शन पर ही निर्भर होता है, और खाना ऐसी चीज होता है जो दो बिल्कुल अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ लाता है। जैसे कई बार हमारे कलीग्स एक अलग तरह की डिश लाते हैं ऑफिस में, तो हम उसी पर वो उनसे रेसिपीज शेयर करते हैं और उसी पर चर्चा जो है वो लंबी होती चली जाती है।
लॉन्ग फूड टॉक ऑल्सो हैपन्स वाइल ईटिंग
जी, बिल्कुल। और इसी तरह दिल्ली के भारत मंडपम में 4 दिन के मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आज से आयोजित किया जा रहा है। ये 22 सितम्बर तक चलेगा। इसका मकसद फूड इंडस्ट्री में इनोवेशन को बढ़ावा देना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता तथा सुरक्षा के वैश्विक मानक स्थापित करे,
और शुगर इस वर्ल्ड फूड इंडिया एग्जीबिशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक ही प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स, फूड प्रोसेसर, खरीददार, एक्सपोर्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ आएंगे।
ऑल ऑफ देम आर गैदरिंग एट वन प्लेस।
बिल्कुल, और इसका फायदा होगा नेटवर्किंग में। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोग मिलकर एक नेटवर्क बना पाएंगे। वहीं नए स्टार्टअप्स को एक मौका मिलेगा अपने प्रोडक्शन को दिखाने का।
This provides a very good opportunity to all of them.
जो फूड स्टार्टअप जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को रिटेलर समेत पूरी फूड चेन से गुजार पाए, उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट बायर्स मिल सकते हैं और इससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के पहले दिन प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि भारत में एक जीवन तथा विविध खाद्य संस्कृति है। भारतीय खाद्य परिवेश की रीढ़ किसान है। उन्होंने कहा कि सरकार नई नीतियों को लागू करके उनकी कड़ी मेहनत का समर्थन कर रही है।
ऑल्सो हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स टू ट्रांसफॉर्म द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। He said the government is creating a strong ecosystem of modern infrastructure and robust supply chains, generating employment opportunities in the country. The Prime Minister pointed towards 100% FDI in food processing sector, Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, formalization of micro food processing enterprises and production-linked incentive scheme for food processing industries. The Prime Minister also said the government is focusing on empowering small enterprises so that they become an integral part of the global value chain.
और शगुन, अगर वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के आयोजन की बात करें, इसके स्तर की बात करें, तो इस इवेंट में 90 देश और भारत के 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा किए और कहा कि ये दुनिया के साथ काम करने के लिए बेहतरीन मंच है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस दौरान खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता मानकों जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए खाद्य विकरण के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों को वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा।
सर फिरोजी, नाउ टॉकिंग अबाउट द इनॉग्रल डे ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया, द कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी सेड इट इज अ कमेंडेबल इनिशिएटिव टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ द फूड एंड प्रोसेसिंग सेक्टर। Mr. Joshi stressed on the need to increase quality and branding of the processing product. He expressed hope that the country will achieve new heights in the food and processing sector in the coming years.
World Food Day is a very good initiative to recognize the potential of the food processing sector, transforming India as food basket of the world. India's strategic geographic location, a consumer base over 1.4 billion people and a large workforce coupled with the conducive domestic environments makes it a prominent hub of the global food.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में अहम योगदान है। मंत्री ने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया को आयोजित करने का मकसद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक मंच प्रदान करना है।
प्रोसेसिंग विद प्रोस्पैरिटी, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आने वाले दिनों में कैसे भारत एक फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने हम लोग अपने आप को प्रस्तुत कर सके, कैसे भारत कंट्रीब्यूट कर सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कैसे भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बना सके। मैं समझता हूं कि ये शुरुआत है, पर इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जितनी बाधाएं आएंगी उन बाधाओं को दूर करने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
सो सर फिरोजी, दिस इज अ 4-day लॉन्ग इवेंट, द वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, एंड एज वी हैव टोल्ड आवर लिसनर्स, इट बिगन टुडे एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, एंड ओवर 90 कंट्रीज 26 Indian states and union territories, and 18 central ministries and allied government bodies are participating in this particular mega event.
वो हम इस बारे में बात भी कर रहे थे कि कितने बड़े स्तर पर ये इवेंट आयोजित किया जा रहा है और हमारे संवाददाता भी इस इवेंट में गए. इस आयोजन में भाग लेने वाले कुछ प्रदर्शकों से उन्होंने बात की जिन्होंने बताया कि वर्ल्ड फूड इंडिया ने उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सामने अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए एक मंच दिया है.
मेरा नाम निशल सोनी है और हमारा स्टार्टअप का नाम है इम्यूनोप्रस आयुर्वेदिक फूड. जो हमारा स्टार्टअप है ये बेस्ड ऑन आयुर्वेदा के बुक्स पे आधारित है जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स है च्यवनप्राश, बादाम पाक और चूरी जिसको हम आयुर्वेदिक मातृरत्न भी बोलते हैं. तो हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल नेचुरल और आयुर्वेदिक हर्ब्स के ऊपर बनाई हुई है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, कोई फ्लेवर नहीं है. हम अभी वर्ल्ड फूड इंडिया में के प्लेटफॉर्म पे आए हैं स्टार्टअप पेविलियन के ऊपर. तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टर एक्सपोर्टर और बहुत बड़े बिजनेस टेरेस का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है.
हेलो, माय नेम इज मनप्रीत एंड आई एम फ्रॉम पंजाब. हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया एग्जीबिशन में पार्ट कर रहे हैं. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है गवर्नमेंट की उसके थ्रू हम लोग पंजाब से आए हैं एंड हमारे पास हनी के बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सारी मॉडर्न नीड्स के साथ कंपेटेबल हैं.
Also, Sir Firozi, it can be said that the key to living a happy life is having access to enough nutritious food. Nutritious food is really, really important, and good food is the reason for genuine happiness for many people. So go and enjoy food items, different kind of food items, listeners.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है. तो शगुन, कहाँ लेकर चल रही हैं आप हमें?
वेल सर फिरोजी, अफ्रीका मूव टू एनहांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन हाई एल्टीट्यूड एनवायरमेंट्स. द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ ड्रोनाथोन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. Aligning with the Atmanirbhar Bharat, this initiative aims at harnessing indigenous technology to boost operational efficiency and tactical superiority in difficult and challenging locations. We have a report on this.
Held at the breathtaking Varela Pass in Ladakh, the HIM Dronathon 2 offered a unique platform for over 20 drone manufacturers to present a range of solutions suitable for high-altitude applications. These innovations included systems for surveillance, logistics, swarm tactics, and first-person view operations. The rugged terrain of Ladakh served as an authentic testing ground, validating the performance and global relevance of these technologies and also positioning India as a key player in the global drone industry. Participants were recognized for their contributions with special awards for winners in the logistics and FPV categories. The event provided the Indian Army with an opportunity to shortlist several products for potential procurement and recommendations for the improvement of others. The Dronathon embodies the Indian Army's forward-thinking vision, emphasizing the critical role of drone technology in future military operations. It also highlights the potential for innovation and global export opportunities, making this event a catalyst for advancement in India's broader goal of self-reliance in the defense field. By harnessing local innovations, the Indian Army is not only enhancing its military capabilities, but also driving technological advancements that will benefit both the military and civilian sectors in the challenging terrains. Par Parikrama, Muzaffarwani from Leh, Ladakh.
Grih Rajya Mantri Nityanand Rai kal Hyderabad ke paas Sardar Vallabh Bhai Patel National Police Academy mein Dikshant Parade ki samiksha karenge.
And Sir Firozi, 188 IPS probationers along with 19 foreign officers from Nepal, Bhutan, Maldives and Mauritius will pass out from the academy this time. Director Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Amit Garg informed that the basic training covered various topics including the newly introduced laws, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, Bharatiya Nyaya Sanhita and Bharatiya Sakshya Adhinayam.
Aur is bare mein aur adhik jankari de rahe hain hamare samvaddata.
The probationers have completed the most tough part of their training at the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy near Hyderabad. They have been imparted focused training in internal security challenges, drone technology, cyber crimes and security, drug trafficking, cryptocurrency, financial frauds, darknet, artificial intelligence, among others, and will now go for district practical training for 29 weeks before returning to the academy for the second phase of basic course training for a period of 9 weeks. When I speak to a few of the probationers who stood first in various categories, they said they had to undergo most challenging conditions as part of the training. However, the positive attitude and hard work helped them to excel. Sonali Mishra, daughter of a former Prasar Bharati senior official from the UP cadre who is going to receive Manipur Cup for Law tomorrow, said the positive attitude helped her to overcome difficult challenges.
I was very happy and I thanked God and my parents because I worked really hard in all the subjects and by God's grace I could receive this trophy here. I'm thankful to everyone who supported me. Initially, I had difficulties in outdoor subject, but slowly, everything fell into place. In outdoor activities, we are supposed to do a rigorous route march of 40 kilometers with 15 kgs load. So I was initially apprehensive, but with the support of all the faculty, teachers here, and my fellow probationers, we all achieved this.
Vishwajit Chaurian from the UP cadre, who stood first in outdoor activities, said his mother nurtured him courageously.
Being in our best outdoor probationer bestowed me this award. It has assessed me as the best outdoor probationer, and it has been due to BIE staff and excellent training that academy has imparted on us, right from weapon training, tactics module, best in drill, and then horse riding. In all these subjects I have been assessed as best. My mother is an Iron Lady. She has raised me, nurtured me valiantly and very courageously. This is the result that I am able to get here, the best outdoor probationer award here.
Aish Yadav from Haryana, who stood first in equitation, wants to give a surprise for his family.
I belong to Haryana cadre. Throughout this journey of ours in NPA, we have inculcated many new talents and new activities that we have learned. So horse riding was one of those. So this year I have won the trophy. It is a live event in which whole of the academy, staff, faculty watches the event. I haven't told my family so far because I want it to be a surprise when they come to POP.
Some people are very determined towards realizing that they end up achieving their dreams at any cost. Tomorrow, the dreams of the 188 IPS probationers will be realized when they take part in the parade, which Union Minister of State for Home, Nityananda Rai, will be reviewing. Lakshmi for Parikrama, Hyderabad.
Now, Sir Fauzi, let's take our listeners to Arunachal Pradesh.
Ji,
Arunachal Pradesh Public Service Commission Secretary Parul Gaur Mittal said that major steps and measures were introduced by the Commission to ensure transparency and accountability in conducting examination by it in the state. We have a report.
Arunachal Pradesh Public Service Commission Secretary Parul Gaur Mittal, in a press briefing in Itanagar, said that the Commission has successfully conducted the first written test of the General Medical Officer for Allopathy and Homeopathy in the state. Informing about various new steps taken by the Commission, Srimati Mittal said that the Commission had introduced grievance cell and 24 hours help desk for the candidates during the examination.
हमने step by step जो नई चीजें introduce किए हैं to ensure complete transparency based on our manual and based on the suggestions received from various payers. हमने बहुत नई चीजें introduce. सबसे पहले एडमिट कार्ड में हमने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी कैंडिडेट्स के लिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो उनको एग्जाम से पहले या एग्जाम के टाइम पे. हमने ग्रीवेंस सेल बनाया और एक हमने हेल्प डेस्क नंबर बनाया जो कम्प्लीटली एक्टिव रहा है ड्यूरिंग द एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस. कैंडिडेट्स अपना ग्रीवेंस दे सकते थे. यूपीपीएससी विल एंश्योर दैट द सेम डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर सेंसिटिव थिंग्स एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर candidates is ensured in upcoming examinations.
She said that the Commission has introduced biometric verification system of the candidates along with the pictures and ID numbers of their forms submitted to the Commission this time. The Secretary said that in future to maintain confidentiality and transparency for the candidates, the Commission will strictly adhere to these newly created rules. For Parikrama, this is K.S. Dole, Akashwani News, Itanagar.
और शगुन अब समय है कि अपने श्रोताओं को लेकर चला जाए आजादी के सफर पर.
जी,
टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ वेटरन फ्रीडम फाइटर बलवंत राय गोपाल जी मेहता. ही डाइड ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑन 19 सितंबर 1965 व्हेन द एयरक्राफ्ट ही वाज ट्रैवलिंग इन अलोंग विद हिज वाइफ एंड अ फ्यू अदर्स वाज शॉट डाउन बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स. एट दैट टाइम ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. Born on 19th February 1900 in Bhavnagar, Balwant Rai Gopalji Mehta joined the freedom movement in 1920, fervently fighting back and resisting the colonial oppression. At that time, protests went widespread and it was much more difficult for the people to persist.
Balwant Rai Mehta, who had almost finished his degree in Bachelor of Arts, resolutely refused to accept a degree from the colonial government. After making public his stance on the imperial powers present in pre-independence India, he joined the non-cooperation movement in 1920 and promptly threw himself heart, body and soul into the battle for freedom. He founded Bhavnagar Praja Mandal in 1921 for carrying on the freedom movement in Gujarat. Later on, he participated in the civil disobedience movement from 1930 to 1932.
Mehta also took part in the Bardoli Satyagraha of 1928 for the farmers of Bardoli against the unjust raising of taxes. He was sentenced for 3 years in prison for participating in the Quit India movement. He spent 7 years in prison during the British Raj. A milestone in his life came along when, as the chairman of the Balwant Rai Mehta Committee in 1957, he would institute the scheme of democratic decentralization, which finally came to be known as Panchayati Raj, a scheme that revolutionized welfare at the grassroots level.
The committee submitted a report suggesting the building of the now famous three-tier Panchayati Raj system, giving legislative bodies complete control over planning and administration. It was a brilliant move, one whose benefits are reaped even to this day. Being one of the masterminds behind the Panchayati Raj system earned him the title of Architect of Panchayati Raj. Truly a man of dedication and perseverance, ever since his youthful days till his death on 19th September 1965, Balwant Rai Mehta left behind an immortal legacy.
And now, listeners, it's time to update you with the happenings of the business world. India's equity benchmark indices ended with modest gains after hitting record high in the intraday trade following the U.S. Federal Reserve's decision to cut interest rates by 50 basis points. At close, the Sensex gained 236 points or 0.2% at 83,184, and the NSE Nifty was marginally up 38 points or 0.1% at 25,415. In the global crude market, Brent crude was trading more than 1% up at $74.44 per barrel, and WTI crude rose nearly 1% to trade at $71.54 per barrel when the reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading at 73,750 rupees for 10 grams. Silver 999 fine is trading at 90,190 per 1 kilogram when reports last came in.
Aur shagun ab apne shrotaon ko khel jagat se bhi roobaru karaya jaye.
Yes, Safirozi, let's talk about badminton. India's Malvika Bansur has advanced into the women's singles quarterfinals of China Open at Changzhou. She defeated world number 25 Kirsty Gilmore of Scotland in the pre-quarterfinals today. Malvika will face Akane Yamaguchi of Japan tomorrow.
अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. आज सबसे पहले किसे याद कर रहे हैं शगुन?
यस, वी आर रिमेम्बरिंग पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इंडियन म्यूजिकोलॉजिस्ट. वेल, ही वाज इनिशियली ट्रेन्ड एज अ लॉयर, हाउएवर हिज रियल कॉलिंग वाज म्यूजिक. Well, in today's time, Sir Firozi, in this today's time and age, anybody can learn music if they want to, primarily because it is lipibadh, or for the lack of a better word, scripted, making it easy to understand and most importantly read. And that could happen because Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande, she invented a devised a system of notation to aid learning and keeping a record of musical compositions. During his time, music was taught as an oral tradition. Compositions were not easily accessible, but he compiled about 1,200 compositions in 6 parts of the Kramik Pustak Malika series. Considered as the architect of present-day Hindustani music, he took various initiatives to ensure the growth and development of music.
आज दमयंती जोशी की भी पुण्यतिथि है। ये कथक नृत्य में शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ये लखनऊ में कथक केंद्र की निदेशक रही। साल 1970 में इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री और 1968 में संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनकी एक प्रस्तुति। We're also remembering Willie Hutch, singer, songwriter as well as record producer and recording artist for the Motown record label during the 1970s and 1980s. And for you listeners, we had the song I Choose You to listen to and enjoy.
Girl, and it's you that I will learn to love, and the place no more above. Oh, how can I ever thank you? Except take you home and make you my loving wife, so we can always be together.
आज सुनीता विलियम्स का जन्मदिन है। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 194 दिन 18 घंटे रहकर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। सुनीता विलियम्स को सन 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और शगुन, सुनीता विलियम्स की जो जिंदगी है वो बहुत प्रेरणादायक रही है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका अंतरिक्ष का सफर कैसा रहा।
Sunny Williams and I'm the pilot for NASA's Boeing Crew Flight Test Mission to the International Space Station. Exploration is curiosity. It's asking the question why. It's taking that next step. Every time we do something for the first time, we're expanding our knowledge. My name is Sunny Williams and I'm the pilot for NASA's Boeing Crew Flight Test Mission to the International Space Station. I feel really lucky to have grown up in a small town outside of Boston, Needham, Massachusetts. It was a great town because we were able to ride our bikes everywhere we went. My brother, sister, and I, we were all swimmers, and it was just a great childhood. My dad was a doctor and also did neuroscience research. We were the strange family who had pictures and diagrams of brains on our dining room table.
और शगुन, सुनीता विलियम्स एक अभियान के तहत स्पेस में गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण सुनीता और उनके साथी अभी वहीं फंसे हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सुनीता अपने साथी के साथ जल्द ही सुरक्षित धरती पर लौट आएं।
डेफिनेटली राइट। मूविंग ऑन, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग विलियम गोल्डिंग, नॉवलिस्ट, प्लेराइट एंड पोएट। बेस्ट नोन फॉर हिज डेब्यू नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंग्स, ही पब्लिश्ड अनदर 12 वॉल्यूम्स ऑफ फिक्शन इन हिज लाइफ टाइम। फिक्शन इज अ जॉनरा। In the year 1980, he was awarded the Booker Prize for Rites of Passage, the first novel in what became his Seed trilogy, To the Ends of the Earth. He was awarded the 1983 Nobel Prize in Literature for his novels, which with the perpicacity of realistic narrative art and the diversity and universality of myth, illuminate the human condition in the world of today.
आज जयंती है कुंवर नारायण की। ये सम्मानित कवियों में गिने जाते थे। फिल्म समीक्षा तथा अन्य कलाओं पर भी इनके लेख नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे। इन्होंने कई भाषाओं के कवियों का हिंदी में अनुवाद किया और उनकी खुद की कविताओं और कहानियों के भी कई अनुवाद विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में छपे। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी इनकी मुख्य रचनाओं में से हैं। इन्हें साहित्य में अपने योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आशान पुरस्कार जैसे सम्मानों से नवाजा गया। और शगुन, इस मौके पर मैं इनकी एक कविता कहना चाहूंगी।
जी।
असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो, कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके, उसे हताश मत करो, काइया तर्कों से हरा हरा कर।
Well, Safirozi, they're also remembering Cass Elliot. She was a member of the singing group The Mamas and The Papas. After the group broke up, she released 5 solo albums. Elliot received the Grammy Award for Best Contemporary Performance for Monday Monday. In 1998, she was posthumously inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. And listeners, you're listening to this song, My Hero Kind of Music.
But you gotta make your own kind of music.
नमस्कार श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।